ओम शांति। बाबा से कल सभी ने श्रृंगार कराया, माताओं ने कराया, कुछ तो देख ही रही कि पता नहीं कैसा श्रृंगार कराया। भाइयों का हुआ श्रृंगार। अब पहले हम मुरली की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। आप सुनाएंगे, भाई सुनाएंगे, जो जिसको अच्छा लगा हो, याद रहा हो, सुनाओ। स्वराज्य अधिकारी स्वमानधारी, कल मुख्य रूप से मुरली स्वमान पर थी, जो बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल भी कराई, उसको ही स्वमान कहा। हम सबका नशा है वो बहुत बड़ा। और बोलो, ज्वाला स्वरूप की फिर से स्मृति दिलाई, होमवर्क की फिर से याद दिलाई 2 मास। तो भगवान को याद है, टीचर को याद है, और स्टूडेंट्स को याद है ना? याद है, याद है, सबको याद है, कोई भूले तो नहीं है? हाँ, मैं एक बात और पूछता हूँ। पहले कल बाबा ने ये ड्रिल कराई और हम सबको करने के लिए कहा, किसने की आज? अरे वाह, इतने सबने की, वेरी गुड, माताओं ने की, बहुत अच्छा। भगवान राजी होता है, पक्के हो गए। अब हम अभी बाहर बात कर रहे थे कि भगवान पीछे पड़ गया है ना? अब तुम्हें स्वराज अधिकारी बाप समान फरिश्ता बनाकर ही छोड़ूंगा, देखता हूँ कहाँ जाते हो। बहुत व्यर्थ में रहे हो, अब इससे मुक्त कराना ही है तुमको। और आगे चलो, खैर माताएं बताएंगी, माताएं बताएंगी। बोलो, पीछे बैठे आगे आ जाओ, तब मैं आपसे पूछूंगा, नहीं तो पीछे वाले खड़े होकर बताओ। खड़े हो जाओ जिस माता को आता हो, नहीं तो आगे आ जाओ, बैठ के बताना है तो। आ जाओ आगे, आ जाओ, आ जाओ। नहीं, माताएं उठने की कोशिश नहीं कर रही। चलो भाई बताओ, भाई भारी हो गए होंगे ना, खाना खा गए हैं? स्वराज्य अधिकारी और मास्टर सर्वशक्तिवान और अनुभव की अथॉरिटी, सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं सर। क्या मास्टर ज्ञान सूर्य, आगे पूरा बताओ, आगे आता नहीं। चलो भाई बताओ। हाँ, क्या लहर फैलाओ, जैसे गोल्ड प्लेटिनम जुबली की लहर फैलाई हुई है, ऐसे ही लहर फैलाओ के अभी चेहरे और चलन से सेवा करनी है। कैसे चेहरे से? माताओं आगे कुर्सी खाली पड़ी, आगे आगे, खुशनुमा चेहरे से। जिसको हिस्सा लेना डिस्कशन में वो आ गया हो, कुर्सी अभी खाली पड़ी, बाकी श्रोतागण पीछे बैठो। श्रोतागण भी तो होते हैं ना, सुनने वाले। और बताओ माताएं, बताओ आगे वाले। बाप समान बनो, बाबा ने फिर याद दिलाया। सेंटर कैसे हो, निर्विघन, और दूसरी बात भी तो बताओ, व्यर्थ से मुक्त। तो है बस ये। और किस बात पे अटेंशन देंगे? नहीं, टेंशन हुई अब अटेंशन देना है। जिस तरह की टेंशन हुई हो उसके विपरीत कौन सी ज्ञान की बात हमें मदद करेगी? मान लो किसी ने हमसे बुरा व्यवहार कर दिया, बहुत बुरा बुरा बोल दिया, और हमें टेंशन होने लगी। अब अटेंशन क्या देंगे? कि बाबा ने कहा है जब ऐसा हो तभी तो तुम्हें मान अपमान निंदा स्तुति में एक रस रहना है। अब एक रस रहने का ये सुंदर अवसर है। महिमा ही होती रहे तो एक रस थोड़ा ही रहेंगे। ऐसे चिंतन से टेंशन जाएगा कि नो टेंशन, हल्का हो जाएगा। बाबा ने स्वमान की चर्चा करते हुए पहली बात कौन सा स्वरूप आगे वाली चारों माँ बहने बताए कौन सा स्वरूप, अनादि। अनादि में कौन सी बात बहुत सुंदर कही, तो ये बहुत सुंदर बात है क्योंकि बाबा के साथ हैं तो जैसे आसमान में कोई सितारे बहुत चमकते। साकार में बाबा क्या कहते थे मामा के लिए मालूम है, चांद के पास जो तारा ध्रुव नहीं वो शुक्र होता है, जो तारा बहुत चमकता है वो मामा की यादगार है। तो कल भी कहा सितारे जो बहुत चमकते हैं ऊपर जैसे, वैसे ही तुम आत्माएं भी बहुत चमकती हो। हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हमारी चमक आम मनुष्यों जैसी नहीं है, हमारी चमक बहुत ज्यादा है। तारे भी कौन से ज्यादा चमकते हैं, नहीं ठीक बोल रहे, सूरज की किरणें पड़ती हैं ना, उसका प्रकाश आता है। अब उन तारों में जो कुछ ज्यादा है अंदर, तारों की जो रचना है, कुछ तारों में तो हीरे ही हीरे हैं। एक तारे के लिए हमने सुना था बृहस्पति या कौन सा कि उस पर निरंतर हीरो की बरसात होती है, तो हीरो पर जब प्रकाश पड़ता है सूरज का तो वो चमक नीचे तक दिखाई देती है। तो ऐसे बहुत चमकते हुए तारे हम पर किसका प्रकाश पड़ता है, ज्ञान सूर्य का। हम जितना उसके पास रहते हैं उसका प्रकाश हम पर पड़ता है और हमारा तेज बढ़ता जाता है। तो हम अपने अनादि स्वरूप का इस तरह अभ्यास करेंगे कि मैं चमकती हुई आत्मा, बहुत तेजस्वी आत्मा परम धाम में हूँ। अपने को परम धाम में देखो और किसका प्रकाश पड़ रहा है, ज्ञान सूर्य का। तो पावरफुल योग हो जाएगा ना, ये ज्वाला स्वरूप योग हो जाएगा हमारा। ज्वाला स्वरूप योग माना जिसमें संकल्प नहीं है, एक संकल्प में स्थित हो जाना, बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाना, आत्मिक स्वरूप पर स्थिर हो जाना, दोनों पर स्थिर हो जाना। जो रोज बाबा मुरलियों में हम सबको याद दिलाते हैं अपने को आत्मा समझ, सिंपल डेफिनेशन है ना साकार मुरलियों में, योग गुह्यतम योग की सबसे सरल परिभाषा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मिक स्वरूप पर स्थिर हो जाएं, फिर बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाएं। लेकिन ये कैसे होगा, लंबा समय कैसे होगा, हम आत्मिक स्वरूप पर स्थिर होना चाहते हैं लंबा समय। हाँ एक तो बहुत ज्यादा समय दिन में हम बहुत बार इसका अभ्यास करें, दूसरा जब हम बैठकर इसका अभ्यास करें तो पहले हम आत्मा के स्वरूप को देखें और साथ में कुछ संकल्प अपने को दिया करें। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे संकल्पों का भंडार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। हम बैठते ही संकल्प दें, मैं आत्मा बहुत तेजस्वी, मैं स्वराज्य अधिकारी, मैं इस देह की मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक, मन बुद्धि की मालिक, राजा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। संकल्प देने से फिर सब संकल्प शांत हो जाएंगे और हम अपने स्वरूप पर स्थिर हो जाएंगे, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अगर हम संकल्प नहीं देंगे तो बुद्धि जल्दी ही भटक जाएगी वहां से। इस बात का सभी को ध्यान रखना है। तो जितने अच्छे से अच्छे संकल्प हम अपने को देंगे उतने ही निसंकल्प होंगे। कहां भटकता है मन, ध्यान दें सभी, गहराई से ध्यान दें। मन जब आत्मसंतोष हमारे पास नहीं होता तो संतुष्टि की चाह में, खुशी की चाह में, कुछ आनंद की चाह में इधर उधर भटकने लगता है, देखने लगता है कहां से मुझे आत्मसंतोष मिलेगा। अगर हम अपने स्वरूप पर स्थिर रहने लगे तो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट रहने लगेगी। गीता का जो दूसरा अध्याय है जिसमें पहले आत्मा का ज्ञान दिया गया है, फिर लास्ट में स्थिर बुद्धि योगी के लक्षण बताए गए हैं। 16-20 लक्षण हैं, श्लोक हैं। उसमें से एक बहुत सुंदर है कि जो आत्मा आत्मा में ही संतुष्ट रहती है वो स्थिर बुद्धि है, अर्थात स्वयं में संतोष रहना, स्वयं के स्वरूप पर स्थित होकर संतुष्ट रहना, ये सबसे सुंदर तरीका है। स्थूल चीजों से कोई संतुष्ट होता नहीं, सब जानते हैं। हमें आज 10 इच्छाएं हो बाजार से कुछ लाने की, हमारे पास पैसा हो 10 ले आए हम, कल फिर क्या होगा, और 10 इच्छाएं हो जाएंगी। ये इच्छाएं ऐसी चीज हैं जो स्थूल चीजों से तृप्त नहीं होती। आत्मा आत्मा पर स्थिर हो जाए तो आत्मसंतोष प्राप्त हो जाता है और मन का भटकना शांत हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है, बाबा आजकल यही चाहते हैं, व्यर्थ से सब मुक्त हो जाएं, क्योंकि व्यर्थ ने ही सारा नुकसान किया है। सेंटर्स में या माताओं के परिवारों में, वो भी तो एक केंद्र है ना, आपका स्थान है एक, वहां पर विघन क्यों है, इसी में उत्तर, क्योंकि व्यर्थ है। किसी भी स्थान को अगर हम व्यर्थ से मुक्त कर दें तो वो स्थान विघ्नों से भी मुक्त हो जाएगा, हमारा अपना जीवन भी। अगर हम स्वयं को व्यर्थ से मुक्त कर लें तो हमारा अपना जीवन भी विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। सभी इस पर ध्यान दें। विघ्नों के लिए हमें दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं, भले ही हमें दिख भी रहा हो, कहीं कहीं होता भी प्रैक्टिकल में कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है, बहुत तंग कर रहा। एक व्यक्ति मुझे फोन कर रहा बहुत परेशान होके, उसकी पत्नी छोटी आयु, एक बच्ची 3 साल की, वो ब्लाइंड हो गई है माताजी। अब ब्लाइंड होने से उसका क्रोध इतना बढ़ गया है, वैसे तो ब्लाइंड होने से शांत हो जाता है, इसका बहुत बढ़ गया। मारपीट करती है, अंधी मारपीट करती है, सास को मारा, इस पति को मारा, अपनी 3 साल की लड़की को मारती रहती है, उसको बचाते हैं कि जान से न मार दे। तो बेचारा दुखी बहुत, क्या करूं, ज्ञान में, माताजी ज्ञान में। आजकल ज्ञानियों का भी कहेंगे क्रोध बहुत बढ़ता जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे विदाई लेने के लिए ज्यादा वो बढ़ रहा हो, या बाबा कहते थे जैसे जैसे अंत आएगा तो 5 विकार में से जो भी विकार किसी के पास बचा होगा ना, वो फिर फुल फोर्स से अटैक करेगा। तो कहा भाई क्या करें, घर में निरंतर अशांति का माहौल है। कभी शांत होती है तो उसको समझाते हैं, हम तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं, तुम धन्यवाद भी नहीं देते। क्यों धन्यवाद दूं, तुम्हारा कर्तव्य है मेरी सेवा करना। मैंने उसे कहा ये आत्मा आपसे हिसाब लेने आई है भाई, अगर हिसाब न लेना होता तो वो थैंक्स मानती कि भाई मेरी आंखें चली गई, तुम लोग मुझे बहुत मदद कर रहे हो, मुरली सुनती, बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन क्योंकि वो हिसाब लेने आई है, जब तक देंगे नहीं उसको आभार फील नहीं होगा कि कोई मुझे कुछ मदद कर रहा है। मैंने कहा देते चलो, खुशी से देते चलो, अब जो भी देना है मार रही है, सहन कर लो कहा, मैं तो सहन कर लेता हूँ, क्या करूं। घर चली गई थी रूस राष्ट्र के, घर वालों ने निकाल दिया 15-20 दिन में, निकलो यहाँ से, हम नहीं रखेंगे, बहुत क्रोध करती हो। माँ से भी लड़ने लगी, कहा हम नहीं रखेंगे, ले जाओ अपनी को भाई तुम। तो कितनी दुर्गति हो जाती है। कहीं कहीं ऐसा दूसरे आत्मा विघन डाल रही हैं, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है, परंतु हम इसको पेपर समझकर अपनी स्थिति को जितना शांत बनाए रखेंगे। मैंने इसको समझाया, बहुत शांत हो जाओ, शांत हुआ, समझदार है बहुत, शांत हुआ कि मैं बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अति हो जाती है उसकी, तो मन उसको फिर आ ही जाता है ना, बहुत हो जाए। तो जितना हम अपनी अच्छी स्थिति बनाए रखेंगे, उतनी परिस्थितियां जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तो अपने को व्यर्थ से मुक्त रखना है। ऐसे केसी जिस घर में हो जाए, उस घर में बहुत समझदारी पूर्वक ऐसी आत्माओं को वाइब्रेशंस देने चाहिए, क्योंकि वो आत्माएं भी परवश हैं, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के कारण परवश हो रही आत्मा, उनकी रियलाइजेशन करने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। बाबा ने कल बहुत पावरफुल बात कही, एक बार बार कही है, हम उसको याद करेंगे। सभी पहले तो व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करने का संकल्प रखे हुए हैं। जब बाबा इतनी इच्छा पूर्वक, कितनी अच्छी भावना है बाबा के लिए, सोचने की बात है, वो भगवान है, ऑर्डर भी दे सकता है, लेकिन कितना प्यार से बार बार हमें समझा रहा है, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। तो हम भी उतनी दृढ़ता पूर्वक स्वयं को मुक्त करने की इच्छा जाहिर करें। भाई माता किसी को दे दो फोन, इनसे बंद करना नहीं आता होगा, ले लो पड़ोसी भाई ले लो, माताओं से आता नहीं ना, उन्हें तो सुनना आता है बस, बाकी आगे पीछे का कुछ नहीं आता। हाँ, दोबारा आए तो भाई कोई लेके बंद करा देना। तो व्यर्थ से मुक्त होने की श्रेष्ठ इच्छा हमारे पास है। सूक्ष्मता से सभी चेक करेंगे अपने को, यहां व्यर्थ को बढ़ावा ही देते हैं। देखो, मैं कुछ लोगों को देखता हूं साक्षी होके, कि अगर कोई बात हो जाए तो वो लग जाते हैं उसके पीछे, जल्दी फुल स्टॉप नहीं लगाते बातों में भी। और ज्ञानी बुद्धिमान वो है जो सेकंड में कम से कम बातों को तो फुल स्टॉप लगाए, मन की बात बाद में, जो बातें हो गई हैं उनको जल्दी से जल्दी समाप्त करना, ये समझदारी है या नहीं, सब संकल्प करें। जब हमें व्यर्थ से मुक्त होना है तो कहीं झुक जाना अच्छा, चुप रहना अच्छा, या टकराना अच्छा। झुक जाना अच्छा है ना, टकराने से हमारा अहम तो सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ हमने जीत लिया, लेकिन व्यर्थ को बढ़ावा मिल जाएगा। इसलिए सभी अपने मन को व्यर्थ से मुक्त करने की दृढ़ इच्छा, समझ रहे हैं ना इस शब्द का अर्थ, मुझे मुक्त होना है, मुझे वो करना है जो भगवान कह रहा है। बहुत अच्छी बात, हम भगवान का दिया हुआ काम करेंगे तो भगवान हमारा काम अभी करता रहेगा, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी वो बात जो बहुत सुंदर है, रोज आई है मुरलियों में, तो कौन सी, मास्टर सर्वशक्तिवान। और कल की सुंदर बात है, मुरलियों में कई बार बाबा कह चुके हैं कि शक्तियां समय पर याद नहीं आती, स्मृति में नहीं आती, जब समय बीत जाता है फिर सोचते हैं सहन कर लेना चाहिए था, सहन कर लेते तो सब बात समाप्त हो जाती। तो कल बाबा ने कहा, इस बात को सभी अंडरलाइन कर लें, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने से शक्तियां बंधी हुई हैं तुम्हारे पास आने के लिए। हम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहें, शक्तियां बंधी हुई हैं आने के लिए, इसका अर्थ है शक्तियां स्वतः ही काम करती रहेंगी। हमें सहन करना है कहीं, सोचना नहीं पड़ेगा कि सहन करना है, सहन कर लेना चाहिए, या सहन करना याद ही नहीं रहा, ऑटोमेटिकली हम सहन करते रहेंगे। इतना नेचुरल रूप से सहन होगा कि सहन करने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि सहन किया है। यह है सहनशीलता की सुंदर स्थिति। हमारे पास ऐसी कई शक्तियां हैं जिनकी हमें रोज जरूरत पड़ती है, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की भी, परखने की, निर्णय करने की, बची कौन सी गई, सहयोग करने की, सारी आ गई ना। विस्तार को संकीर्ण माना एकाग्रता की शक्ति। तो हमें इन शक्तियों की रोज और हर समय जरूरत रहती है। अब देखो आप, सहन करना नेचुरल होगा। शरीर में कोई बीमारी आ गई, कोई दर्द हो गया, कोई पीड़ा हो गई, हम उसे इतना सहज भाव से सहन करेंगे कि हमें भी पता नहीं चलेगा कि कुछ पीड़ा भारी थी। और अगर सहन शक्ति नहीं है तो छोटी सी पीड़ा में भी कराहता रहेगा मनुष्य, परेशान रहेगा, सारे घर को परेशान कर देगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वमान की सीट है ये हमारी। चलो इसी सीट पर बैठकर बाबा की किरणें ग्रहण करेंगे। हमारी स्वमान की बात रह गई थी, पहला स्वमान बाबा ने अनादि स्वरूप। हम अभ्यास करते रहेंगे, मैं बहुत चमकती हुई आत्मा, तेजस्वी आत्मा परम धाम में, शरीर में तो है ही पर परम धाम में अपने को देखेंगे। दूसरा आदि स्वरूप, कौन सी अच्छी बात कही, बहुत सुखदायी प्रकृति, प्रकृति सतो प्रधान। तीसरा हमारा स्वरूप पूज्य, क्या मुख्य बात कही, माताओं को भी याद है नहीं, ज्यादा पूजा तो माताओं की होती है, इनको ही भूल गया, भाइयों की पूजा कम है थोड़ी। क्या कहा बाबा ने, बोलो बोलो, भाइयों ने बोल दिया आपकी बात, कायदे अनुसार पूजा होती है, नियम है, मंत्र नियम, मंत्रों के नियम हैं, पूजा के नियम हैं, ऐसे नहीं जल चढ़ा दिया चलो भाई, बहुत सुंदर नियम है। ऐसी पूजा धर्म पिताओं की, गुरुओं की, जो आजकल के हैं, नेताओं की तो खैर पूजा कौन करेगा और किसी की नहीं होती है। ब्राह्मण, कौन सी नई बात बताई, बोलो बोलो, ठीक बोले, पवित्रता की जायदाद डायरेक्ट बाप द्वारा प्राप्त हुई है, कितनी अच्छी बात कही। कल बाबा का ध्यान था और सुख संवाद, इस पवित्रता के कारण ही तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हो। समझ ले इन रहस्यों को, जिसके पास जितनी प्योरिटी उतनी ही शक्तियां, प्योरिटी कम तो न ज्वाला स्वरूप योग होगा न मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा चढ़ेगा। दो दिन पहले मुरली भी थी, बच्चू बादशाह, सबको याद है ना, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर, काम क्रोध दोनों, और दोनों का गहरा कनेक्शन, बादशाह और वजीर का तो कनेक्शन ही रहता है ना, दोनों को साथ मिलके काम करना होता है। काम जिसके पास जितना ज्यादा, क्रोध उतना ही ज्यादा, काम पर विजय माना, क्रोध पर भी विजय, चित्त शांत शीतल। तो हमें अपनी पवित्रता की शक्ति को भी बढ़ाते चलना है। स्वराज अधिकारी से भी ये बात जुड़ जाती है। मैं आपको बाबा की एक बात सुनाऊं, कभी कभी मुरली में ऐसी बातें आती हैं साकार मुरली में कि उन्हें सुनकर लगता है कि हमने पहले क्यों नहीं सुनी बात। हमारे पास मुरलियां तो 5 साल की है ना सारी, हम तो उनको बहुत बार सुन चुके हैं, फिर भी कभी कभी बहुत सुंदर बात आती है। बाबा की मुरली में आया, जब से मैंने सुना मुझे याद रहने लगी ये बात, हो गए होंगे 3-4 साल रिपीट होकर आई। मैंने इस केतन में प्रवेश किया और अपनी पवित्रता की किरणें इसके शरीर में फैलाकर इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा बोल रहे, समझ गए ना। तो देखो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए वो काम कर दिया था आते ही, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को पूरा जीवन लगाना पड़ रहा है। अंग अंग शीतल, पीछे मुरली में आ गया था, जब तुम्हारे अंग अंग शीतल हो जाएं तो समझ लो त्रेता तक पहुंच गए। सतयुग तक बाकी है अभी, इसके बाद भी कुछ है, सोच लो। याद है मुरली में आया था या मुझे ही याद है? केवल ये मुरली में आ चुका है। सतो स्थिति तक पहुंच गए, त्रेता यूज किया था बाबा ने। सतो स्थिति है जब हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं। इसके आगे भी प्योरिटी है जिसमें आत्मा व्यर्थ और साधारण संकल्पों से मुक्त होकर श्रेष्ठ स्वमानधारी हो जाती है। यह है संपूर्ण प्योरिटी, समझ रहे हैं ना। व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त, वो तो पहले हो गए, फिर साधारण संकल्पों से भी मुक्त, श्रेष्ठ स्वमान में स्थित। तो ऐसी स्थिति जिसके लिए बाबा पहले भी कह आए हैं मुरली में, याद होगा आपको, ऐसी प्योरिटी ही सबसे बड़ी पब्लिसिटी बन जाएगी। याद है कुछ दिन पहले अव्यक्त में रिवाइज में ये बात आ चुकी है। तो हमारी ऐसी प्योरिटी संसार की आत्माओं को आकर्षित करेगी, जो बहुत बड़ी बाबा की सेवा करना चाहते हैं उन्हें अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है। मैं बाबा की कुछ बातें रिपीट कर देता हूं। पवित्रता सुख शांति की जननी है, सब जानते हैं इसको, लेकिन और रूप से जाने। अगर कभी भी थोड़ा भी दुख होता है तो समझ लो पवित्रता की कमी है। ये बाबा ने ही कहा। अगर मन परेशान होता है, अगर खुशी नष्ट होती है, अगर उदासी आती है, अकेलापन फील होता है, मोह जागृत होता है, ईर्ष्या द्वेष उठती है, ये सब अपवित्रता है। इन सब से मुक्त होना है, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मचर्य अपनाता है और उसके पास ईर्ष्या रह जाती है तो ब्रह्मचर्य का तेज ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें संपूर्ण पवित्र बनना है तो इन धारणाओं पर पूरा ध्यान देना है। ये पवित्रता के बीज के वृक्ष समझ ले, टहनियां निकलती है ना वृक्ष से, ये टहनियां हैं उसके, बीज पवित्रता और ये सुंदर वृक्ष। चित्त शांत, क्रोध की अग्नि शांत, इच्छाएं समाप्त, दूसरों से कामनाएं नहीं, कर्मेंद्रियों को शीतल हमें करना है। पर अभी मैं दूसरी बात पे चर्चा करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा जैसे प्लेटिनम जुबली की सेवाओं की लहर फैलाई है वैसे ही लहर फैलाओ, रिपीट करो फिर से, चेहरे और चलन से सेवा करनी है। कैसा चेहरा? खुशनुमा चेहरा। खुशनुमा चेहरा का अर्थ ये नहीं कि हंसते रहें, बहुत खुश रहते हैं। हमारे पास नीचे एक भाई है, कल भी मैं देखा, एक बहन मिल गई उसको विदेश की इंडियन, वहीं बाबा की मुरली चलते ही उसने उसको जी बैठा लिया और शुरू कर दिया आप ही उसके बिना पूछे ही, मैं एवर हैप्पी हूँ, सदा खुश रहता हूँ। अरे वो तो बंद ही नहीं है, उधर बाबा बैठे हैं, भोग खिलाया जा रहा बाबा को, ये अपनी गाथा, मैं एवर हैप्पी हूँ। अब सब उसे जानते हैं कि वो बाहर से तो खुश रहता है पर दूसरों की खुशी भी छीनता रहता है, तो लोग उसकी बात सुन के अंदर ही अंदर मुस्कुराते ही हैं कि शायद इसको पता भी नहीं हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी क्या होती है। क्या है खुशी? जो चेहरे से चमकती हो। कैसे है होगा ये प्रसन्न चेहरा? अंदर में सुंदर मनन चिंतन हो रहा हो, अंदर में सुंदर स्वमान की स्थिति हो, प्योरिटी का बल हो, जीवन योगयुक्त हो, तो चेहरे पर अलौकिक खुशी की चमक आती है। हंसने से नहीं, हंसते तो दुनिया में बहुत है, आजकल तो हंसना भूल गए, इसलिए लाफिंग क्लब खोलने पड़े लोगों को, पैसा कमा रहे हैं। आओ 50 रुपए दो और हंस के जाओ, देखा कितना सुंदर तरीका है, पैसा दो और हंस के जाओ, ठीक है ये बात। हमारी आंतरिक खुशी जो हमारे चेहरे को देखते ही दूसरों के दुख भी समाप्त हो जाएंगे, हमारे चेहरे देखते ही दूसरों की टेंशन भी समाप्त हो जाएगी, ये आंतरिक खुशी है। सब जानते हैं सवेरे जब हम मुरली सुनकर बाहर निकलते हैं तो यदि सभी की फोटोग्राफी की जाए, वीडियोग्राफी और दिखाई जाए, तो सबको अपने चेहरे बदले हुए दिखाई देंगे ना, एक अलौकिक चमक सभी के चेहरों पर आ जाती है। मुरली के बाद विशेष योग में भी कम या ज्यादा? कम, मुरली के बाद ज्यादा। क्यों योग में कम? किसी को नींद आ जाती है, किसी का योग लगता नहीं, थी ना कल भी मुरली में, स्मृति स्वरूप नहीं रहते हैं, थोड़ा सा चिंतन किया फिर किसी को नींद आ गई, किसी के संकल्प चल गए, लेकिन मुरली सुनते समय मन में सुंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं। आज बाबा ने कहा तुम्हें परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए, तो हरेक को होती है ना कम या ज्यादा। तो मुरली के महावाक्यों का इफेक्ट आत्मा को खुशनुमा बनाता रहता है। हम ध्यान दें, हमें अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी, चलन तो बड़ी चीज हो गई, टोटल हमारा जीवन जिसमें ना हमें क्रोध हो, न मुख से हम कटु वाणी बोलें, न हमारे व्यवहार से किसी को दुख दिया जाए, न हमें टेंशन हो, न हम परेशान हो, न हमारी खुशी गुम हो रही हो, ये होगा हमारा चेहरा, सर्विसेबल चेहरा। ऐसा चेहरा बनाने के लिए एक ही बात पर सभी ध्यान देंगे, बहुत सुंदर धारणा है वो जीवन की, नो एक्सपेक्टेशंस, कामना नहीं, दूसरों से कामना नहीं। आदि गीता इसी बात पर है, निष्काम हो जाओ, जीवन ऐसा जियो जिसमें हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, कर्म करते रहें, अपनी सेवा करते रहें, देते रहें, लेने का संकल्प ही नहीं। लेना कोई पैसा नहीं, लेना कोई कामना नहीं, कोई हमारी महिमा करे, कोई बहुत अच्छा कह के जाए, विदेशों में तो क्या थैंक्स भी न कहो तो बुरा मानते हैं, यहां तक पहुंच गए, इंडिया में तो थैंक्स कहने का रिवाज ही नहीं, ठीक है ना, मन से थैंक्स दे देते हैं, विदेशों में थैंक्स ही थैंक्स, उनका सारा दिन थैंक्स और सॉरी में जाता है, और ऐसा कोई ना करे तो परेशान, कामनाएं है ना। निष्काम, निष्काम, विदेशों की बात सुन के तो हंसी आती है कभी कभी, क्रिश्चियन धर्म कहाँ तक पहुंच गया कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं वहां, हमारी बहनें बताती है लंदन की, बड़े बड़े होर्डिंग्स कहते हैं ना, बड़े बड़े बोर्ड बाजारों में जो लगते हैं, उन पे लिखा रहता है भगवान है या नहीं, लिखो नीचे। धर्म की ये दुर्गति, तो जीवन में सुख नहीं रहा उनको, परिवार ही नहीं रहे, ब्रेक हुआ। एक बहन सुना रही, मुरली सुनाने आई ज्ञान सरोवर में, कि हम जब स्कूल में गए और दाखला लिया ना, तो हमसे ये भी पूछते हैं तुम्हारे माँ बाप मैरिड हैं कितने साल से, ये भी एक कॉलम है, क्योंकि एक एक स्त्री पुरुष ने कई कई बार शादी की है, शादी करना फैशन है, नहीं बनी छोड़ो दूसरी कर लो, उससे भी नहीं बनी तीसरी, उससे भी नहीं बनी चौथी, तो बनते ही नहीं ना, जब अंत आता है तो अकेले रह जाते हैं, उदास जीवन, सबसे धोखा मिला, प्यार में टक्कर मिली, प्यार सफल नहीं हुआ, संबंध सफल नहीं हुए, क्या जीवन है उनका। ये क्रिश्चियन धर्म का हाल हो गया, सबसे ज्यादा दुर्गति आज क्रिश्चियंस की है, इसलिए खुशी नष्ट होती जा रही। मेरे शब्द ये किसी को खराब लग सकते हैं, पर सत्यता यही है। भारत चाहे कितना भी नीचे गिर गया, फिर भी खुश हैं लोग, परिवार हैं यहाँ, परिवार में जाकर मनुष्य की आधी टेंशन खत्म हो सकती है, होती है ना, खुशी का माहौल हो। तो हम सभी एक महान देश के वासी हैं, हमें खुशनुमा जीवन जीना, ये काम भारत वालों से ही होगा, विदेशियों से नहीं होगा। विदेशों में तो कोई अगर मुस्कुराता भी हो तो लोग सोचते हैं बड़ा भाग्यवान है भाई, कोई ये तो मुस्कुराता है, और यहाँ ज्यादा मुस्कुरा दें तो लोग परेशान होते हैं, ज्यादा मुस्कुराता है, कुछ गड़बड़ ना हो। तो हमारा खुशनुमा चेहरा आत्माओं को बाबा की ओर आकर्षित करेगा, ध्यान देंगे इस पर। खुशनुमा चेहरा माना, एक ही बात में ले लें, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, संतुष्टता से भरपूर चेहरा, ऐसा जीवन कितना सुंदर है जिसमें हम संतुष्ट हो गए। जो बाबा ने ब्राह्मणों के लिए कल बोली, कोई पूछे क्या मिला, ब्राह्मणों के दिल में मतलब कुछ बचा ही नहीं जिसको पाने की जरूरत पड़े, ये भरपूरता, संपूर्ण संतुष्टता बहुत बड़ी चीज है ना। उस टाइम तो लगता है ना सामने भगवान बैठा है, और तो कुछ भी हमें नहीं चाहिए। जिसको देखने की इच्छा थी वो सामने बैठा है, कितनी बड़ी बात है, भगवान साधारण रूप में बैठा है, अपने परिवार के साथ बैठा है, भगवान का परिवार हो गए ना हम। तो ऐसा चेहरा आत्माओं को आकर्षित करेगा। सभी माताएं बैठी हैं, बहुत सारे भाई गृहस्थ में रहने वाले, लास्ट बात आप सबको कहता हूं, अपने अपने परिवारों में सुख शांति रखने के लिए, जो यहाँ के बैठे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में संपूर्ण सफलता रखने के लिए, 10 मिनट का ऐसा समय निश्चित करें, चाहे 5-5 मिनट करें, 3-3 मिनट 3-4 बार कर लें, वाइब्रेशंस फैलाएं। जिस घर में जिस स्थान पर पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं वहां विघ्न आपदाएं नहीं आती, ये काम सबको करना है। विघ्नों में उलझ के परेशान रहना, व्यर्थ संकल्प समय सब चला जाता है ना, उससे अच्छा है रोज 10 मिनट अपने घर में बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएं। और वाइब्रेशंस फैलाने का सबसे सुंदर तरीका है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस नशे के साथ योग में बैठेंगे तो हमारे अंग अंग से किरणें फैलेंगी, वाइब्रेशंस फैलेंगे, और घर का वातावरण अलौकिक होता जाएगा। ये जो भी अनहोनी समस्याएं आती है ना, जैसे मैंने उस माता की बताई, ये देखो ब्लाइंड भी हो गई, अभी अभी ब्लाइंड हुई है 1 साल में ही, और फिर इतनी क्रोधित हो गई कि उसका जीवन तो नरक में हो गया ना, पूरी तरह से न देख सकती और न जीवन में शांति। ऐसी परिस्थितियों से हम बचे रहें, इसके लिए अपने स्थान के घर के वातावरण को पावरफुल बनाए रखें। कितनी दया की बात है ना उस माता के लिए, दया आती है, रहम आती है। बेचारी का जीवन भगवान मिलने के बाद भी कैसा दुखों से भर गया है। हम ऐसी आत्माओं के लिए वाइब्रेशंस देंगे। ये ब्राह्मणों को भी, ऐसे ब्राह्मणों को भी हमारी सकास की बहुत जरूरत है ना। इसलिए बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग से संस्कार भी जल जाएंगे। रावण का उदाहरण लिया ना, केवल मारते नहीं जलाते हैं, तो संस्कार भी जल जाएंगे और पावरफुल किरणें भी आत्माओं को मिलेंगी। सभी ध्यान देंगे, जैसे बाबा हमारे पीछे पड़ गया है ना, हम भी अपने पीछे पड़ जाएं। हमें भी बनना है, बाबा को बनाना है, तो हमें दोनों के संकल्प समान हो जाएंगे तो तेजी से बन जाएंगे। ओम शांति।